ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वर्षायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् विस्तारम् कर्मभूवृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में अभी सूत्र 7 की हम चर्चा कर रहे थे, उसमें पृष्ठ संख्या 193 पर आ गए। 193 बहुत विस्तार से अपनी चर्चा हो चुकी है। देखो यहां हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, अनादि अज्ञानी जीव के कौन से भाव कभी नहीं हुए। पढ़ने के पहले हम ही देखेंगे ना, अनादि से जो अभी तक मिथ्यात्व दशा में है उसके कौन कौन से भाव नहीं हुए हैं। हाँ आप कहेंगे। औदयिक भाव हो रहे हैं। हाँ पारिणामिक तो है, सबको होते हैं। हाँ आपका कहना है औपशमिक, क्षाउपशमिक और क्षायिक नहीं हुए। क्या सभी इससे सहमत है? हाँ अरुणा बेन, क्षायिक ही नहीं हुआ, औपशमिक हुआ ना उसको। हाँ वो आप ही कह रहे हैं। हाँ हाँ क्षाउपशमिक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ रजनी भाई नहीं हुआ। हाँ उसका जो कुज्ञान है ना, मति शुत कुअज्ञान चल रहा है, उसको कुज्ञान चल रहा है, कुअज्ञान नहीं कुज्ञान, कुमति और कुश्रुत है ना उसको अनादि से। नहीं समझा, मिथ्या दृष्टि जीव है उसको ज्ञान कुछ न कुछ चल रहा है कि ज्ञान भी मिट गया है उसका? ज्ञान चल रहा है उसका। जो अभी कुज्ञान है अनादि से ही कुज्ञान चल रहा है, वो कौन सा भाव है? सार्वक्षमिक भाव है। हमने देखे थे क्षयोपशमिक भाव, चार ज्ञान यानी सुज्ञान और तीन कुज्ञान, कुमति कुश्रुत और कुअवधि, और ये दान लाभ भोग उपभोग वीर आदि पांच, ये सभी क्या है? क्षयोपशमिक भाव है। यानी अनादि से कौन से क्षयोपशमिक भाव चल रहे? दो कुज्ञान तो नियम से है ही, और ये पांच, ये सारे क्षयोपशम भाव है।
और दर्शन भी है ना?
हाँ दर्शन भी है, बरोबर है। दर्शन के भी चक्षु, चक्षु जो है अवधि, किसी किसी को कभी होता है अवधि ज्ञान की वाले को अवधि दर्शन होगा, और यहाँ ऐसे भी विभंग ज्ञान है ना, को अवधि के साथ वो अवधि दर्शन नहीं लगाते, ऐसी कुछ पद्धति है। तो उसके तो दो तो दर्शन है ही अनादि से, और दो ज्ञान है कुज्ञान, और ये दानादि पांच है, ये सारे क्षौपशमिक भाव है। तो उसके कौन से नहीं हुए प्रश्न पूछा था ना, तो बोलो सरलाबेन कौन से भाव उसको नहीं हुए, अनादि मिथ्या दृष्टि को कौन सा भाव नहीं हुआ अभी तक? हाँ पहले में पहले धर्म होता है तब कौन सा भाव होता है? औपशमिक। तो उसको कभी हुआ नहीं है, क्योंकि सबसे पहले प्रथम में प्रथम सम्यक दर्शन होता है, तो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, इस जीव को अभी तक कभी नहीं हुआ है, और क्षायिक भी होने का सवाल ही नहीं है। ख्याल में आया? हाँ, अब हम पढ़ेंगे। देखो पारिणामिक भाव बिना कोई जीव नहीं है, उसी को परम पारिणामिक यानी स्वभाव। हाँ वो तो सबको है, वो अनादि से है, वो कुछ प्रकट होने वाला नहीं, वो तो द्रव्य रूप भाव है। पर्याय रूप भावों की चर्चा ये हुआ नहीं जब कहेंगे, वो पर्याय की बात है, और द्रव्य का स्वभाव तो हर एक के पास अनादि से जैसा है वैसा ही है। उसका लक्ष्य करने से औपशमिक भाव, क्षायिक भाव आदि और क्षौपशमिक सम्यक्त्व, आपको जो क्षौपशम नहीं कहते रहते आप, तो क्षौपशम सम्यक्त्व नहीं हुआ है, परंतु क्षौपशम ज्ञान तो उसको हुआ है, है उसका अनादि से चल रहा है। देखो हम अभी पढ़ेंगे, यह बात लक्ष्य में रखना चाहिए के जीव के अनादिकाल से ज्ञान दर्शन और वीर्य क्षयोपशमिक भाव रूप से है। किंतु वे कहीं धर्म के कारण नहीं है, क्योंकि कितने ही जीव निगोद में है अनादि से, उनके भी ज्ञान और दर्शन और वीर्य इनके एक सौक्ष्मिक भाव है। तो अनादि से जो नित्य निगोद में पड़े हैं, उनके कौन कौन से ज्ञान दर्शन हो गए? आप प्रबोध भाई आप कहेंगे, निगोद का कौन सा ज्ञान चल रहा है वहां पर? मिथ्या तो है, परंतु उसके ज्ञान को कौन सा ज्ञान कहेंगे? हाँ, मिथ्या ज्ञान, परंतु उसका नाम क्या है? अवधि ज्ञान है कि केवल ज्ञान है? कुमति और कुश्रुता। अवधि ज्ञान है कि नहीं उसके? निगोद का नहीं। हाँ, हम वो निगोद को ही देख रहे हैं। निगोद को क्यों नहीं है? हाँ शांति भाई, निगोद में अवधि ज्ञान क्यों नहीं है? कौन कहना हाँ, अवधि ज्ञान संगी पंचेंद्रियों को ही पाया जाता है। वो अंश है, वो कुमति और कुश्रुत ज्ञान रूप से है। तो उनके कुमति ज्ञान है और कुश्रुत ज्ञान है। निगोद में दर्शन कौन सा है? निरंदे आप कहेंगे कुदर्शन। अच्छा, आप क्या कहते हैं? कौन कहना चाहते? प्रभावेन बोलो।
कुचक्षु दर्शन भी होता है, चक्षु
होता
है। चक्षु दर्शन। अच्छा, वो कु है कि सु है? दर्शन में ना कु होता है ना सु होता है। एक ज्ञान में कु ज्ञान होता है, क्योंकि देखो दर्शन तो ऐसे ही सामान्य अवलोकन, वो क्या है उसके आगे बात चर्चा आएगी, उसमें सु और कु कुछ नहीं होता है। ज्ञान में सु और कु होता है, मिथ्या ज्ञान कहते हैं हम। ये मिथ्या दर्शन वाला जो दर्शन है ना, वो तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, परंतु दर्शन गुण वाली जो पर्याय चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, तो उनके चक्षु दर्शन का सवाल ही नहीं, क्योंकि चक्षु इंद्रियों के द्वारा जो जानते हैं उससे पहले होने वाला वो चक्षु दर्शन है। इनके कौन सा ज्ञान चल रहा है, कौन से इंद्रियों के द्वारा ज्ञान चल रहा है? स्पर्शन इंद्रिय। तो उससे पहले होने वाला उनका अचक्षु दर्शन है। चक्षु इंद्रियों को छोड़कर अन्य इंद्रिय और मन के द्वारा जो जानना होता है उससे पूर्व होने वाला है वो अचक्षु दर्शन। हमें अचक्षु दर्शन है कि नहीं है? हाँ, चक्षु अचक्षु दोनों है, क्योंकि एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय के जीवों को एकमात्र अचक्षु दर्शन है, और आगे वाले जीवों को दोनों है। नहीं तो ऐसा नहीं समझना चतुर इंद्रिय के आगे चक्षु दर्शन है और तीन इंद्रिय तर अचक्षु, ऐसा नहीं है। चतुरिंद्रिय पंचेंद्रियों को चक्षु दर्शन भी है और अचक्षु दर्शन भी है। तो ये जो वहां दर्शन चल रहा है वो भी सौक्ष्मिक भाव है।
जिसकी आंखें खराब हो गई है उसको भी चक्षु।
हाँ, जिसके आंखें खराब हो गई है उसके भी चक्षु दर्शन है, क्योंकि वहां उसका सौक्ष्मिक भाव चल रहा है, क्योंकि सामने कर्मों का सौक्ष्म है। भले वो वहां देख रहे नहीं देख रहे, अंधे है, तो भी उसको चतुर इंद्रिय पांच इंद्रिय जीव कहेंगे कि चतुर इंद्रिय कहेंगे? जन्म से अंधा है उसको क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? मनुष्य है तो पंचेंद्रिय है ना। हाँ, ऐसा ही समझना। भले वो देख नहीं सकता, क्योंकि वो जो उसके जो डिफेक्ट है वो बाह्य द्रव्येंद्रियों में है, उसके ज्ञान के उघाड़ में कोई वो कमी नहीं है। वो तो चक्षु संबंधी ज्ञान का उघाड़ उसका चल रहा है। अब आगे, ये जो उसके अनादि से उसके जो ज्ञान दर्शन और वीर्य है वे सौक्ष्मिक भाव है, परंतु वे धर्म के कारण नहीं है। अब दूसरा पॉइंट, अपने स्वरूप की असावधानी, इसका नाम क्या है? जो मिथ्या दर्शन रूप मोह, मिथ्यात्व कहो या मिथ्या दर्शन कहो, वो क्या है? स्वरूप की असावधानी। स्वरूप के प्रति वो बिल्कुल सावधान, उसकी पहचान नहीं है, उसकी उसको तीव्र अरुचि है, और जो ऐसा मिथ्यात्व है उसका अभाव रूप औक्षमिक भाव, मिथ्यात्व के अभाव रूप क्या होता है? सम्यक्तो। तो उसका अभाव रूप औपशमिक वर्ण है, औपशमिक सम्यक्तो। अनादि अज्ञानी जीव के कभी प्रकट नहीं हुआ। जब जीव सम्यक दर्शन प्रकट करता है तब दर्शन मोह का यानी मिथ्यात्व का उपशम होता है। हमने इसकी विस्तार से चर्चा की थी कैसे उपशम हो जाता है। सम्यक दर्शन अपूर्व है, अपूर्व ने पूर्व में कभी नहीं हुआ था ऐसा है, इसलिए उसको क्या कहा? अपूर्व है, क्योंकि जीव के कभी भी पहले वह भाव नहीं हुआ था। कौन सा? औपशमिक वाला, क्योंकि सबसे पहले होता है तो औपशमिक सम्यक तो ही होता है। ऐसा औपशमिक सम्यक तो जीव को पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए उसको कहा अपूर्व। इस औपशमिक भाव के होने के बाद मोह से संबंध रखने वाले क्षाउपशमिक और क्षायिक भाव उस जीव के प्रकट हुए बिना नहीं रहते। एक बार औपशमिक सम्यक दर्शन होने के पश्चात उससे संबंधित यानी क्षाउपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व हुए बिना नहीं रहता। इसका क्या अर्थ है? भले औपशमिक सम्यक्त्व के बाद क्षाउपशमिक सम्यक्त्व होकर या ऐसे भी कोई गिरकर मिथ्यात्व में चले जावे, तो भी अभी कालांतर में उसको क्षाउपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व हुए बिना नहीं रहेगा। अब वह जीव अर्धपुद्गल परावर्तन काल से अधिक काल इस संसार में रुलने वाला नहीं है। वह जीव अवश्य ही मोक्षावस्था को प्रकट करता है, इसलिए संभाल कर क्या कहते हैं, समय दर्शन प्रकट करना है ना, फिर संसार में भटकना नहीं मिलेगा। जिसको भटकना है ना वो समय दर्शन के पीछे मत लगना। क्यों?
मोह
का संबंध रखने वाला क्षयोपशमी कहने क्या? दर्शन मोह का क्षोपशम वाला यानी क्षोपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। मोह से संबंध वाला क्षाउपशमिक और क्षायिक का अर्थ क्या है? मोह दोनों मोह ले सकते हैं, उसके संबंध वाला क्षोपशम यानी क्षोपशम सम्यक्त्व भी ले सकते हैं, क्षोपशम चारित्र भी ले सकते हैं, और क्षायिक में भी क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र दोनों को ले सकते हैं, क्योंकि वो तो होने वाला ही है। अब वो नियम है उसका, कुछ काल में वो अवश्य ही मोक्ष जाने वाला जीव है। अब चौथा पॉइंट, उपरोक्त औपशमक आदि तीन भाव किस विधि से प्रकट होते हैं? उपरोक्त है ना, कौन से? अभी जो हमने सम्यक्त्व वाले जो देखे थे, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षौपशमिक और क्षायिक वाले जो भाव है, वो कौन से विधि विधि यानी किस कौन से प्रोसेस से, किस अनुक्रम से या कौन से मेथड से वो प्रकट हो जाते हैं? जब जीव अपने इन भावों का स्वरूप समझकर, क्या कहा, ये पर्याय को जानना कि नहीं जानना, सुबह बहुत चर्चा हुई थी ना इसकी, कि पर्याय को जानना जिसको हम कहते व्यवहार, तो उसका ही निषेध कर देते हैं, ये पर्याय बिना का है हमारा, ऐसा नहीं है। पहले उसको ठीक तरह से समझकर त्रिकाल ध्रुव रूप सकल निरावरण अखंड एक अविनश्वर शुद्ध परिणामिक भाव की ओर, क्या कहते हैं, पहले इन पांचों ही भावों का स्वरूप समझेंगे। त्रिकाल रहने वाला स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, पारिणामिक भाव क्या है, उसको भी समझेंगे और पर्याय रूप भावों को भी समझेंगे, क्योंकि द्रव्य तो ये नित्य और अनित्य अंश मिलकर पूरा द्रव्य होता है, एक सामान्य अंश और एक विशेष अंश, दोनों को ही यथा योग्य जैसा है वैसा उसको समझना अत्यंत आवश्यक है। जब समझ में आती है बात, तब हम विशेषों को गौण करके सामान्य की दृष्टि करते हैं। इस सामान्य को यहां शुद्ध कहा है। तो कहते ये जो त्रिकाल ध्रुव रूप, त्रिकाल यानी तीनों काल, अनादि से ही जो ध्रुव रूप, वही का वही का वही वही हर समय है वाला जो सदृश परिणाम है, वो कैसे? सकल निरावरण, पूर्ण रूप से निरावरण है, उसमें कोई भी बंध है नहीं है। बंध रूप भाव कहां पर है? पर्याय में, क्योंकि उदयिकादि जो भाव है वो कहां चल रहे? पर्याय में चल रहे। परंतु ये जो पारिणामिक भाव है वो कैसा भाव है? उसमें ना कोई बंध है ना ही कोई मोक्ष है, उसमें कुछ क्योंकि वो तो अनादि से अनंत काल तक जैसा है वैसा है। मोक्ष होने के बाद पारिणामिक भाव में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, जो कोई चेंजेस होने वाले वो पर्याय रूप भावों में होंगे। पहले जो कोई अन्य भाव थे, क्षाव श्रमिक आदि थे, अभी वो क्षायिक हो जाएंगे, परंतु पारिणामिक भाव जैसा है वैसा ही रहेगा, इसलिए उसको सकल निरावरण कहा है। बोलो।
इसमें पारिणामिक भाव बोले ना, तो भाव से ऐसा लगता है कि वो पर्याय
नहीं, पर्याय नहीं, ये भाव यानी देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में किसको लेते हैं हम, भाव उसको स्वभाव, उसका जो कोई परिणाम को भी भाव कहते हैं, चारित्र गुण की पर्याय को भी भाव कहते हैं, शुभ भाव अशुभ भाव, परंतु ये भाव शब्द के अलग अलग अर्थ आते हैं। और यहाँ जो भाव जो है वो स्वभाव को यहाँ भाव कहा है, पारिणामिक भाव, कर्म से निरपेक्ष ऐसा जो भाव है, तो कहते हैं जो त्रिकाल ध्रुव रूप कैसा है वो सकल निरावरण, निरआवरण, इसमें कभी आवरण हुआ ही नहीं है, ऐसा जो भाव है कैसा है वो अखंड है, उसमें कोई खंड नहीं है। ये सुबह बहुत हमने इसकी विस्तार किए थे निरावरण शब्द का, ना उसमें कोई द्रव्य से खंड है, ना क्षेत्र से खंड है, और ना ही काल से खंड है, और ना भाव से खंड है। द्रव्य तो अखंड एक है ही है, क्षेत्र में भी जो हम प्रदेशों के जो अपेक्षा से उसके विस्तार बताने के लिए असंख्यात प्रदेशी कहते हैं, तो वहां कोई असंख्यात खंड नहीं है, वो पूरा अखंड एक द्रव्य है। वैसे ही जब हम काल की अपेक्षा से एक एक समय के खंड करते हैं पर्यायों की अपेक्षा, तो हम उसको एक पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय कहते हैं, परंतु द्रव्य तो अनादि से अनंत काल तक फैला हुआ है, द्रव्य का काल अनादि अनंत कहते ना, तो तब उसको हम अखंड एक द्रव्य कहते हैं। और एक एक समय के पर्यायों का लक्ष्य करेंगे तो हमने उसके भेद डाला, हमें अभेद द्रव्य को दृष्टि में लेना है, वो अभेद जिसको हम सुबह देखा था शुद्ध ने का विषय, ऐसा जो अभेद द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा और भाव की, भाव यानी जो अनंत गुण है उनको अलग अलग उनके भेद पर लक्ष्य नहीं देना है, अभेद उन अनंत गुणों का एक अभेद जो पिंड है, ज्ञानादि गुणों का पुंज जिसको कहने में आता है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है, तो ऐसे उसको ये जो अभेद अखंड ऐसा जो द्रव्य है, तो कहते अखंड एक, ये एक की बात भी एक में भी वही बताना चाहते है, अखंड में भी वही बताना चाहते हैं, अभेद कहेंगे तो भी उसी की बात चल रही है, उसी को अलग अलग विशेषणों से समझाया है। अविनश्वर, जिसका कभी विनाश नहीं होता है उसको अविनश्वर कहते हैं। शुद्ध, शुद्ध की भी बात हमने देखी थी, पारिणामिक भाव जो सामान्य है, सामान्य विशेष में से जो सामान्य भाव है उसको शुद्ध कहते हैं, और जो पर्याय रूप, पर्याय जब कहते हैं, पर्याय ने भेद, भेद का लक्ष्य करते हैं हम, तो उसको अशुद्ध कहने में आता है, भेद यानी अशुद्धता, और वो अखंडता है उसकी, वो है उसकी शुद्धता। तो ये जो सामान्य पर हम लक्ष्य करते हैं तो हमने शुद्ध को लक्ष्य में लिया है, और जब भेद किसी भी प्रकार से, भेद गुणों का भेद हो, पर्यायों का भेद हो, या प्रदेशों का भेद हो, किसी भी भेद पर हम दृष्टि डालते हैं, नजर डालते हैं, उसको अपने रूप से स्वीकार करते हैं, उस संबंधी विचार करते हैं, तो राग की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमें अखंड अभेद ऐसे निर्विकल्प आत्मा को यानी अभेद आत्मा को दृष्टि में लेना है, दृष्टि का अर्थ स्व स्थापित करना है, तो हम कहते हैं हमने शुद्ध आत्मा का लक्ष्य किया।
यहाँ जो ध्रुव को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से एनालिसिस किया, तो द्रव्य क्षेत्र काल तो एकदम खाला जाता है, और भाव तो वो सामान्य पारिणामिक भाव होगा,
नहीं, भाव में वो अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड जिसको हम पारिणामिक भाव कह रहे हैं, उसमें अकेले विशेष गुण ही नहीं, सभी सामान्य विशेष गुणों का अभेद अखंड पिंड जो है उसको पारिणामिक भाव का स्वभाव भाव, कल बात आई थी ना वो ध्रुव, वो गुणों की बात आई थी, वो गुण उसके वे के वे रहते हैं, कल बात आई ना तथा शब्द से वहां आई थी बात, आपने प्रश्न भी पूछा था कि वो तो द्रव्य तो है सादृश्य, उसमें वो सभी अनंत गुण वे ही के वे ही चल रहे हैं, तो ये उसकी बात आई थी इसमें अपने टीका में, उसकी चर्चा भी हुई थी अपनी।
चौदहवीं और पंद्रहवीं गाथा में इसको अविशेष बोला,
अविशेष कहा है, हाँ, तो उसको ये एक ही बात को अलग अलग पद, क्योंकि ग्यारहवीं गाथा में उसको शुद्ध नय का विषय कहा है, शुद्ध नय किसको देखता है, अभेद को, अभेद को देखना ही वो शुद्ध नय का जो विषय है, तो शुद्ध नय के विषय को भी वहां शुद्ध नय कहा है, ये आचार्यों की अलग अलग पद्धति से कथन करने की बात ख्याल में नहीं आती है तो हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। यहां क्या कहते हैं, उसमें अपना लक्ष्य स्थिर करता है। ये लक्ष्य कौन से गुण की पर्याय है? हाँ सरला भी, हाँ लक्ष्य करता है ने क्या करता है? हाँ हाँ मान बेन, कौन कौन कहता है, कौन कहे? हाँ अरुणा बेन क्या कहते हैं? ज्ञान गुण की पर्याय, लक्ष्य करना है ने उस पर अपना ज्ञान केंद्रित करना, एकाग्र हो जाना, तब उपरोक्त तीन भाव प्रकट होते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि को उपशमिक भाव प्रकट होता है, और इसी पद्धति से यानी एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद फिर क्या करना, यही करते रहना उसी में लक्ष्य देना है, उसी में एकाग्र होते रहना है। तो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कोई और है और केवल ज्ञान का और है, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए जो पारिणामिक भाव सामान्य भाव है उसमें लक्ष्य केंद्रित करना है, परंतु उसके पहले की कंडीशन क्या थी, सामान्य विशेष दोनों को यथार्थतया जानकर फिर सामान्य में अपना लक्ष्य केंद्रित करना है। पर्यायों को यथार्थ नहीं जानते हैं और सामान्य का लक्ष्य करो या अपना आत्मा का अनुभव करो, ये हो नहीं सकता। इसलिए जो तत्वों का चिंतन जो बात आती है, पांच भावों रूप तत्वों का चिंतन करो, सात तत्वों के माध्यम से करो, निमित्त उपादान है, क्रमबद्ध पर्याय, पांच समवाय, जो कोई जिनेन्द्र भगवान ने बताए हुए सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को बार बार लक्ष्य देकर उसको अपने ही विचारों में लेकर वो सही है कि नहीं है, हमें वो कैसे भासित होते हैं, होते हुए को हमें जानना है। जो कार्य चल रहा है अभी, यहां बोलने का कार्य चल रहा है तो कैसा फील हो रहा है, वो कैसे भासित हो रहा है, मैं बोल रही हूं ऐसा भासित होता है कि ये जानने का कार्य अलग भासित होता है और ये बोलने की पर्याय अलग किसी द्रव्य की चल रही है भासित होता है। केवल ये मेरा कार्य नहीं, भाषा वर्ग का कार्य, वर्णना का कार्य, ये तो कथन में आ गया, हम बोलना सीख गए उसकी बात नहीं है। बोलने में तो हम बहुत चतुर हो गए हैं, परंतु क्या हमें ऐसा फील हो रहा है, क्या हमें अपने ज्ञायक भाव में मैंपना की प्रतीति हो रही है, अपने आप को जांचना है ना हम कहां पर खड़े हैं। तो ये कहते हैं कि ये तीन भाव प्रकट होते हैं। श्रद्धा उसमें स्व स्थापित करती है, श्रद्धा जानती ही नहीं। श्रद्धा ने किसमें स्व स्थापित किया है? ज्ञान ने सबको जाना है, किसको? पर्याय रूप भावों को भी जाना है और स्वभाव भाव को भी जाना है। श्रद्धा ने उसमें स्व स्थापित किया। अभी तक स्व कित में स्थापित किया था? शरीर में किया था, यानी पर में किया था या पर्याय में किया था? कौन से पर्याय? औदयिक आदि भावों में स्व स्थापित किया था कि ये मेरा स्वभाव भाव है, ये मैं इस करते करते मेरे को समय दर्शन होगा, तो उसने पर्याय रूप भावों में स्व स्थापित किया था। तत्वों की भाषा में बोलना है तो आश्रय बंध रूप भावों में उसने स्व स्थापित किया था। उसने जीव तत्व और आश्रय तत्व का भेद ज्ञान नहीं किया था, अपना ज्ञान और राग ये दो भिन्न तत्व है ऐसा उसको अनुभव नहीं चल रहा था। इसको कहते भेद ज्ञान, बार बार उसमें जो भेद है उसको लक्ष्य में लेकर उस पर जो तत्व चिंतन चलेगा उसका। हाँ बोलो, आपका प्रश्न क्या है?
मैं पढ़ रही और सुन रही थी ना टेप, उसमें सुना था कि एक गुण भी दूसरे गुण का कार्य नहीं करती है, नान गुण श्रद्धा गुण का कार्य नहीं करती है, ना श्रद्धा गुण नान गुण का कार्य। हमने दर्शन जो अपना श्रद्धा गुण अंदर पढ़ा है उससे उत्पन्न होता है, और केवल ज्ञान करना है तो नान स्वभाव में लीन होती है।
बराबर है,
तो ज्ञान स्वभाव अत्यंत व्यवहार पड़ा है, वो ज्ञान स्वभाव का अंतर्मुख होकर उसको कारण बनाकर जब उसमें लीन होते तो केवल ज्ञान की।
हाँ, तो ज्ञान स्वभाव है वो पूरा आत्मा का है कि ज्ञान गुण का है?
पूरा आत्मा का
है। हाँ, तो
अनंत गुण है ना आत्मा?
बिल्कुल, अनंत गुणों का अभेद उसी को तो पारिणामिक भाव कहा। ज्ञान स्वभाव कहो, पारिणामिक भाव करो, ज्ञान ज्ञायक भाव कहो, ध्रुव रूप भाव कहो, अनादि अनंत निरावरण भाव कहो, एक ही बात है। या अपने आप में लीन हो, आत्मा में लीन हो जो कहते, तो वही बात कहना चाहते। आत्मा में ने कौन से, ये इसमें आत्मा ने मैं पना स्थापित करना है। ये श्रद्धा गुण तो बस स्व को ही स्वीकार करती है, ज्ञान सब कुछ दिखाता है, स्व और पर सबको दिखाता है। और ये जो स्व जो मान लेना, ये श्रद्धा का काम है। श्रद्धा वो कुछ नहीं, स्व पर वगैरह कुछ नहीं, वो बस स्व ही को स्वीकार करती है।
जब बोलते हैं ना समय दर्शन होता है तो ज्ञान गुण भी सिद्ध हो जाता है।
बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान भी
तो समय दर्शन पढ़ने उसका काम किया नाम का काम
नहीं किया, परंतु एक समय में सभी कार्य होते हैं। तो जब अब तक क्या हुआ, श्रद्धा ने स्व को स्व स्वीकार नहीं किया था, अभी श्रद्धा ने स्व को स्व स्वीकार किया है, ज्ञान ने तो स्व को स्व जाना है और चारित्र में भी स्व में आचरण यानी लीनता कर ली है, क्योंकि ज्ञान अपने को ही जानता रहा तो उसमें लीन हुआ ना, तो उसको चारित्र कहेंगे हम। तो ये तीनों ही एक समय में हो जाते हैं, उसका नाम अलग अलग देकर हमको समझाने के लिए हम इतना भेद करते हैं। वैसे द्रव्य अखंड एक रूप है तो उसके ये सारे भाव एक समय में प्रकट होते हैं, तो उसको कहेंगे सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो सम्यक दर्शन हुआ तो वहां कुछ ऐसा सम्यक दर्शन अंदर शब्द लिखा हुआ पाएगा, कैसे समझा जीव को? अब बोलो सम्यक दर्शन हुआ है कैसे समझा उसको, क्या जाना जानने ज्ञान ने? आत्मा हूं ऐसा जाना ना, श्रद्धा गुण ने काम किया, परंतु ज्ञान ने क्या जाओ? सम्यक दर्शन हुआ है कैसे पता चला? बोलो अरुणा
भाई।
बहुत अच्छा, जिस समय अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ तो ख्याल में आया इस समय समय दर्शन समय ज्ञान समय चारित्र हुआ है, उसको तो अखंड आत्मा का अनुभव आया है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ है, वो जाना उसने प्रत्यक्ष जाना, इसलिए कहते हैं वो वेदन प्रत्यक्ष है, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, ना ही आत्मा के प्रदेश जानने में आए है और ना ही वो अनंत गुण दिख रहे उसको। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ देखो 194 पृष्ठ पर, अपने अविनाश्वर, अविनाश्वर यानी जिसको हम नित्य कहते हैं, बिना विनाश वाला शुद्ध पारिणामिक भाव की ओर के झुकाव को, ये अनादि से ही शुद्ध है परंतु हमने उसको स्वीकार नहीं किया था, जाना नहीं था, तो उसकी ओर झुकाव यानी उसका उसके संबंध में जानना, उसकी रुचि हो जाना, उसकी ओर ज्ञान की बार बार उसमें उसको लक्ष्य में ले लेना, उसको अध्यात्म भाषा में निश्चय नय का आश्रय कहा जाता है। क्या कहा? नय का आश्रय लेना है क्या नहीं? आप कहेंगे नय तो ज्ञान की एक पर्याय है, पर्याय का आश्रय करना कि नहीं करना? बोलो नहीं करना, तो यहाँ क्यों लिखा है?
का
बहुत अच्छा, ये तो शास्त्र की भाषा होती है, हम भी व्यवहार में ऐसी शॉर्ट भाषा बोलते हैं, परंतु वहां तो बिल्कुल अच्छी तरह से सब कुछ समझ जाते हैं। यहाँ क्या कहा है? निश्चय नय का आश्रय। 11वीं गाथा में शुद्ध नय भूतार्थ है, कहा दोनों का अर्थ क्या है? निश्चय नय का विषय रूप ऐसा जो भाव, कौन सा? पारिणामिक भाव, या शुद्ध शुद्ध नय का ऐसा अभेद जो अखंड जो विषय है, उस नय के विषय को स्व रूप से ग्रहण करना, उसी को जानते रहना, उसको यहाँ कहा है निश्चय नय का आश्रय। निश्चय नय के आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। आश्रय किसने लिया? पारिणामिक भाव ने आश्रय लिया ना अपना। क्या कहते हैं शांति भाई आप, कौन स्व है? पारिणामिक भाव स्व है ना। देखो हाँ, आश्रय लेने वाली पर्याय है, पर्याय ने लक्ष्य किसका किया? पर्याय का नहीं, पर्याय ने लक्ष्य किया पारिणामिक भाव जो नित्य है अविनाश्वर है, उसका आश्रय किया, तब पर्याय स्वयं जो नेक्स्ट पर्याय कैसी शुद्ध शुद्ध अपने आप को जानती हुई शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। जिस पर्याय ने, अभी हम थोड़ा अटपटा बोलेंगे ना, जिस विशेष पर्याय को विशेष कहेंगे, जिस विशेष ने सामान्य को जाना, सामान्य को जाना, उस विशेष में विशेषता प्रकट हुई। क्या विशेषता प्रकट हुई? सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वो विशेष विशेष हो गई। तो देखो क्या कहते हैं कि निश्चय नय के आश्रय से शुद्ध पर्याय, यहां शुद्ध पर्याय ने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की पर्याय उत्पन्न हुई। निश्चय का विषय अखंड, कोई खंड नहीं, खंड नहीं यानी कोई भेद नहीं, भेदों को हमने गौण करके अखंड को ध्यान में लिया है, अखंड अविनश्वर पर्याय रूप भाव विनश्वर है और ये पारिणामिक भाव अविनश्वर है, उसी को शुद्ध कहते हैं, सामान्य को ही शुद्ध कहने में आता है। ऐसा जो पारिणामिक भाव अर्थात ज्ञायक भाव है, ज्ञायक कहने से अकेले ज्ञान गुण की बात नहीं चल रही है, पूरा अखंड ज्ञानादि अनंत गुणों का अभेद ऐसा जो पिंड है उसकी बात यहां चल रही है। उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे भी भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, अभेद अखंड आत्मा जो है वो ज्ञायक भाव है। व्यवहार नय के आश्रय से शुद्धता प्रकट नहीं होती किंतु अशुद्धता प्रकट होती है। व्यवहार नय का आश्रय का अर्थ क्या है? व्यवहार नय का विषय क्या है? भेद। व्यवहार नय दो बातें करता है, या संयोग और जो दो द्रव्यों को मिलाकर कथन करता है वो व्यवहार नय का एक कार्य हुआ। जैसे जीव ने कर्म को बांधा, जीव ने कर्म का उपशम किया, ये भी व्यवहार नय का कथन है। व्यवहार नय का दूसरा कार्य क्या है? एक ही द्रव्य में भेद करना। व्यवहार नय के दो कार्य, दो द्रव्यों को मिला के कथन करना और एक ही द्रव्य में भेद करके कथन करना। हाँ, तो एक ही द्रव्य में भेद किया कि ये अनंत गुणों का अखंड पिंड है, तो हमने गुणों को अलग अलग, ये ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, भेद किए ना, ये एक एक समय की पर्याय हमने भेद किए, तो ये भेद करना व्यवहार नय का कथन है। जहां भेद पर लक्ष्य जाता है वहां राग की उत्पत्ति होती है, निर्विकल्पपना नहीं रहता, इसलिए वहां कहते हैं शुद्धता प्रकट नहीं होती। शुद्धता यानी सम्यक दर्शन की जो पर्याय है वो अभेद अखंड आत्मा को लक्ष्य में लेने से होती है, उसका उस पर लक्ष्य केंद्रित है ना, एकाग्र होना, उसी को हम ध्यान कहते हैं ना। परंतु भेद का जब ध्यान करते हैं, भेद पर जब लक्ष्य जाता है, तब ये पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं होती, सम्यक दर्शन नहीं होता। लक्ष्य ने ज्ञान को एकाग्र करना, लक्ष्य ज्ञान ने किया, हाँ भेद किया, परंतु उसमें वो अभेद को उसने ध्यान में लिया, सामान्य को लिया है। जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अभी हमें मति है कि श्रुत है कि अवधि है उसको मत सोचो, अकेले ज्ञान 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 को सोचो, तो हमने किसको लक्ष्य में लिया? सामान्य को। ऐसे ही यहां अनंत गुणों के भेद रूप को गौण करो, पूरा अखंड द्रव्य को ख्याल में ले लो। गुण पर्यायों का पिंड तो है, परंतु गुणों के भेद, पर्यायों के भेद, प्रदेशों के भेद, इसका लक्ष्य छोड़ दो। तो आप कहेंगे ये गुण पर्याय कहीं चली जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, द्रव्य को छोड़कर जा ही नहीं सकते। द्रव्य की अनादि अनंत पर्याय द्रव्य के स्वभाव में वो विद्यमान है, और उसके गुण तो कहीं छोड़कर जा ही नहीं सकते। पहले समझने के लिए हमने भेद करके समझा, जब द्रव्य समझ में आ गया है तो अभेद का हमको अवलंबन लेना है, उसको जानते रहना है। विकल्प कहां तक कार्यकारी थे? द्रव्य कैसा है समझने के लिए। हम ध्यान के नाम पर भी क्या कर रहे हैं? विकल्प को उठा रहे हैं। अभी विकल्पों की जरूरत है कि नहीं? इसका विकल्प आएगी उसके नाम नहीं, क्या उसकी जरूरत है अभी? वो तब तक कार्यकारी थे जब द्रव्य कैसा है समझ में नहीं आया था। अब द्रव्य कैसा है समझ में आ गया है, तो अभी ज्ञान डायरेक्ट उस पर केंद्रित करो जिसको हमने पारिणामिक भाव कहा है। तो व्यवहार नय के यानी भेदों पर जब जब लक्ष्य जाता है तब वहां राग की उत्पत्ति होती है। राग यानी ये शुभ भाव है। जब तक भेदों के विकल्प चलेंगे तब तक वो कौन सा भाव चल रहा है? शुभ भाव। तब तक शुद्ध भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तो शुद्ध भाव कैसे प्रकट होगा? तो पारिणामिक भाव के आश्रय से, आश्रय नहीं उसमें एकाग्र होने से। तो ये कैसे करना? तो ये सहज होगा, उसके लिए इन भावों की चर्चा करेंगे, पहले समझेंगे और फिर वो पारिणामिक भाव क्या है, सामान्य क्या है, उसको समझेंगे, तब ये बातें सहज हो जाती है। ये समय सार गाथा 11 है ना, यहां तो निश्चय ने कहा है परंतु वहां शुद्ध ने शब्द आया हुआ है। शुद्ध ने उसी को कहते हैं, अभेद का जो लक्ष्य में लेता है उसको शुद्ध नहीं कहा। 47 में कौन से नंबर का है शुद्ध ने? कोई कहेगा? हाँ सरला भी, सरला हाँ एकदम बिगिनिंग, आप जरा याद करना। 47 नयों में शुद्ध ने का नंबर कहां पर है? आपने बिगिनिंग में तो द्रव्य नय पर्याय नय की बात की ना,
वो तो है
द्रव्य नय पर्याय नय, फिर अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य ने, अस्तित्व वक्तव्य, नास्तित्व वक्तव्य, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य, विकल्प ने, अविकल्प ने, नाम स्थापना द्रव्य भाव सामान्य विशेष नित्य अनित्य सर्वगत असर्व शून्य शून्य ज्ञाने द्वैत ने ज्ञाने अद्वैत ने नियति ने अनित्य ने स्वभाव ने अस्वभाव ने काल ने अकाल ने पुरुषकार दैव ईश्वर अनिश्वर गुणी अगुणी कर्तृ अकर्तृ भोक्तृ अभोक्तृ क्रिया ज्ञान फिर व्यवहार निश्चय अशुद्ध और शुद्ध सैतालीसवा ये वो अभेद अखंड आत्मा को ध्यान में लेता है, ये नहीं उसको विषय करता है। हाँ बोलो।
मुझे आप कभी बोलते हैं पारिणामिक भाव का आश्रय लेने का, उसका मतलब पर्याय का नहीं तो अखंड
सामान्य का जिसमें सभी विशेष हमने गौण कर दिए हैं, ऐसा सामान्य। हम उदाहरण देखते हैं ना, जैसे हमारे पास बहुत सारे गहने हैं, बंगड़ी है, हार है, कान का जो कुछ, इयर रिंग है, जो कुछ है, तो हम जब सोना हमारे पास कितना है विचार करते हैं, तो क्या किया हमने, उसमें जो सोना है उसको मुख्य किया है, हमने वो कौन से गहने हैं, क्या डिजाइन है, उसको गौण कर दिया है।
तो वो ऐसे ही है ना, त्रिकाणी ध्रुवात्मा,
उसी को तो कहना है ना।
हाँ, तो उसका दूसरा नाम है।
हाँ, वो पारिणामिक भाव कहो, ज्ञायक भाव कहो, कारण समय सार कहो, कल हमने उसके बहुत सारे नाम देखे थे।
हाँ।
कारण परमात्मा कहो, एक ही बात है।
हाँ।
उसको नाम अलग अलग है तो क्या वो वही का वही है ना, जो सामान्य है। यहाँ सामान्य को शुद्ध कहा है।
हाँ।
पर्याय में जो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, सबको अशुद्ध में डाल दिया है। क्या कहा?
तो पर्याय को सिर्फ जानो।
पर्याय जानने का विषय, ज्ञान तो सबको जानता है, किसको किसको, स्व को, पर को, पर्याय को, दुनिया को, संयोग को, सबको जानेगा।
लेकिन अखंड ध्रुव आत्मा का आधार लेके,
आधार यानी उसमें स्व स्थापित किया है ना। हाँ। क्योंकि अभी हम केवल ज्ञानी भगवान पर्याय को जानेंगे कि नहीं जानेंगे, उनको राग द्वेष होगा कि नहीं? क्योंकि अभी जो, तो हमें क्यों अकेले पारिणामिक भाव का ही आश्रय, उसी को क्यों जानते रहना? हम पर्यायों को जानते रहेंगे तो क्या होता है? तो अभी हम ज्यादा रागी है ना, तो ये भेद को जानते रहने से हमारे में वो विकल्प की उत्पत्ति होती है, राग की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए हमें वो सामान्य को ज्ञान में लेना है। हाँ। क्योंकि जो आपको कौन सा डिजाइन बनाना है बंगड़ी का, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, वो बहुत विकल्प होते हैं। और हमारे घर के कोई बुजुर्ग है, उनको अपना सोना है ना बरोबर कांस्टेंट, चलो कोई भी डिजाइन बना दे, उसमें क्या है, ऐसा है ना, तो उनके कोई चिंता नहीं होती है।
ध्यान में रखा होता है ना।
हाँ।
तो हम ध्यान करते हैं तो मैं नान स्वरूप हूँ, ऐसे नान को पकड़ेंगे ना।
आपका प्रश्न है, जब ध्यान करते तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा ही पकड़ेंगे ना, अकेले ज्ञान को नहीं कहना है। समय सार परिशिष्ट पढ़ना, वहाँ कह दिया है ज्ञान मात्र, सुनो अभी, ज्ञान मात्र कहने से अकेले एक ज्ञान गुण की बात नहीं है। अखंड जो ज्ञायक भाव है, पूरा ही पारिणामिक भाव है, उसको वहाँ ज्ञान मात्र कहकर पुकारा है।
हम सबको तो पकड़ नहीं सकते, ज्ञान को पकड़,
तो ज्ञान के पकड़कर, पूंछ पकड़कर ऊपर चढ़ना है ना, अपने को हाथी पर जाके बैठना है। तो ज्ञान मात्र कहने कर, ज्ञान ये अपना प्रकट लक्षण है, वो एक गुण है। सुनो अभी प्रश्न पूछते तो उसका उत्तर पहले सुनो। तो जब ज्ञान मात्र कहा हमारा, हमको आत्मा को कभी हमने जाना नहीं, उसको जानना है, तो कैसे जानेंगे? लक्षण द्वारा। अभी उसका प्रकट लक्षण क्या है जो हमारे ख्याल में आता है? तो जानन क्रिया जो चल रही है वो प्रकट लक्षण है। आप कहते हैं ये आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। तो ये कुछ नहीं समझ में आता, ये किसको समझा? वो आपको समझा ना, तो ये समझने वाला कौन है? आप स्वयं। हमने एक गुण के द्वारा पूरा अखंड, क्योंकि जहां एक गुण है वहां पर ही सभी अनंत गुण है, ये हमने पहले ही सीखा था। क्यों? क्योंकि जो द्रव्य है, गुण किसको कहना, कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है। ज्ञान गुण कहां रहता है? अभी मान लेते ये जीव नहीं है, परंतु इसको हम जीव मानेंगे, तो ज्ञान गुण संपूर्ण भागों में है, दर्शन गुण संपूर्ण भागों में है, उसका वीर्य गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, क्रियावती गुण, जो कितने अनंत गुण है वो संपूर्ण भागों में है। जब हम एक ज्ञान गुण को नक्की करेंगे तो उसके साथ सभी गुण है कि नहीं है? हमने तो ज्ञान के द्वारा हमको आत्मा पकड़ में आना था, तो जहां ज्ञान है वहां अनंत गुण है कि नहीं है?
क्या दूसरे गुण से ज्ञान गुण की पर्याय तो नहीं प्रकट?
उसकी क्यों चिंता करते? वो पर्याय का प्रकट करने का कार्य द्रव्य स्वयं अपने आप हर समय कर रहा है। हमें तो पहचानना है द्रव्य को, किसी एक गुण के द्वारा हमने द्रव्य अखंड द्रव्य को पकड़ा है। ख्याल में आता है? जब आप सोना खरीद करने जाते हैं बम्बई में तो क्या करते हैं? पहले डिजाइन देखते हैं, डिजाइन से नक्की किया, फिर वो बराबर पीला है कि नहीं वो सब देख लिया, और आपको अभी पेमेंट करना है तो क्या करता है वो? जाके वजन करता है। तो जब वजन करके आपने पैसा दिया तो आपको बराबर गारंटी है कि उसका डिजाइन और उसका पीलापन उसमें आएगा, क्या वो उसके पास रहेगा? और आप वजन लेके आएगी घर में, पैसा देकर अकेला वजन लाया, क्या लाया? पक्का है? क्यों? अरे जहां वजन है देखो उसको जरा, जब हमने आपने सिलेक्ट किया तब तो डिजाइन और उसका पीलापन देख के सिलेक्ट किया था, और पैसा दिया तब वजन देख के पैसा दिया, तभी भी ख्याल है ना कि उसमें वो बाकी गुण है, वहां पर कहीं चले नहीं जाएंगे। तो जहां एक गुण है वहां अविनाभाव रूप से उसके अनंत गुण है। तो एक गुण के द्वारा हमने आत्मा को लक्ष्य में लिया है, हमारा भेद पर लक्ष्य नहीं है। अब ज्ञान कहकर भी जो भेद पर लक्ष्य डालता है, भेद पर जब तक दृष्टि है तब तक उसको आत्मा का अनुभव नहीं होगा। हमें तो पूरा आत्मा ख्याल में लेना है।
आज तो गुरु जी की टिप सुन रही थी, उसमें तो बोलते हैं ज्ञान केवल न उत्पन्न होता है, ज्ञान गुण से होता है, ज्ञान में तद्रूप हो जाओ, उसमें एक हो जाओ।
आत्मा को भी ज्ञान कहते हैं, 62वीं गाथा में कहा है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। आत्मा को ही ज्ञान कहा है, आत्मा में तद्रूप होकर लीन हो जाओ कहो, या ज्ञान में कहो तो भी ज्ञान कहा है, आत्मा ही ज्ञान रूप है। कहने की कथन की अलग अलग अपेक्षा आती है, हम अपेक्षा को चूक जाते हैं तो हमारी भ्रमणा शुरू हो जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे ना थोड़ा, देखो
परिशिष्ट
ये परिशिष्ट पढ़ना आप ये कोई भी गाथा पढ़े, प्रत्येक गाथा गाथा में कितना क्लियर है। ये प्रवचन रत्नाकर आपने पढ़ा है? गुरुदेव के 11 भाग है प्रवचन रत्नाकर के, चल रहे हैं बहुत अच्छे,
उससे उसके आधार से ही चल रहा है प्रवचन।
कितने हो गए भाग?
10वां चालू है।
बहुत अच्छा। हाँ तो अभी परिशिष्ट के नजदीक है ना, परिशिष्ट ही चाल है। हाँ
415 गाथा।
हाँ और वो सुबह बात आई थी नयों की, नए प्रज्ञापन भी पढ़ना। मैं तो कहूँ प्रवचन सार जरूर पढ़ना शुरू से अंत तक। यह हुआ है स्वाध्याय के? नहीं हुआ है? नहीं, कंप्लीट करना। क्यों कहते? प्रवचन सार के प्रवचन में गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि प्रवचन सार के अभ्यास के बिना समय सार पढ़ता है, एक तो बात वो ख्याल में नहीं आती है, क्योंकि वहां तो डायरेक्ट शुद्ध नय को पहले मुख्य किया है। यहाँ क्या लिखा है? पांचों ही पर्याय और स्वभाव दोनों को जानकर फिर उसमें एकाग्र होना है। तो पहले वहां तो प्रवचन सार में तो ज्ञान की मुख्यता से कथन है, लिखने वाले आचार्य ही है कुंदकुंद आचार्य, और प्रवचन करने वाले भी स्वामी जी स्वयं है गुरुदेव। प्रवचन सार के ऊपर भी उन्होंने प्रवचन किए थे जो अभी पूरे के पूरे अवेलेबल है। तो उसमें तो कितना सर्वांगीण उसका स्वरूप वर्णन किया ज्ञान की अपेक्षा से। ज्ञान तो सबको जानेगा, पर्यायों को जानेगा, तो वहां तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन बिल्कुल इतने विस्तार से और इतना सूक्ष्म विवेचन है कि पढ़ते हैं तो सर्वांगीण स्वरूप ख्याल में आता है, फिर समय सार में कौन सी अपेक्षा कहाँ कैसी वो ख्याल में आता है।
ज्ञान तत्व प्रज्ञापन हुआ है
और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का पहले 15 का था।
हाँ हाँ, नहीं जरूर पढ़ना, पूरा ही आद्योपांत पढ़ना, एक बार नहीं अनेक बार। आप कहेंगे एक बार नहीं हुआ अनेक बार कैसे होगा, एक बार पूरा हो गया तो फिर दोबारा कभी, क्योंकि बार बार पढ़ने से हमारी वो अपेक्षाएं भी ख्याल में आती है। और ये जो भ्रांति चलती है ना कभी कभी समय सार पढ़ने वालों को, ये दृष्टि दृष्टि क्या है, तो उसको तो ज्ञान को ही दृष्टि समझ लेते हैं, और ज्ञान सबको जानता है ये बात भूल जाते हैं, और बस इतना वो निश्चय नहीं या शुद्ध नहीं का ये हो जाता है कि वो तो व्यवहार को झूठा ही बना देते हैं। सुबह बात की थी ना हमने, व्यवहार नहीं को जानना ही नहीं,
आत्मा को
आत्मा को
ज्ञान गुण
अधिक मात्रा में है अन्य गुणों से या
ज्ञान गुण जानने का कार्य करता है, निर्णय करने का कार्य भी ज्ञान गुण करता है। और आत्मा को हम आत्मा को पहचानना है, ज्ञान उसका प्रकट लक्षण है। क्योंकि दर्शन का कार्य क्या चल रहा है वो इतना ख्याल हमें नहीं, परंतु जानना जानना हर समय चल रहा है, वो अपने ही ख्याल में आता है। दर्शन का भी चल रहा है, मैं हूं ऐसा जो एहसास है, मैं हूं, तो ये एहसास जो है वो दर्शन गुण का वहां कार्य चल रहा है। परंतु ज्ञान का जैसे प्रकट अनुभव चलता है, तो ऐसे अन्य गुणों का अभी है नहीं। अभी उसको समझाने जाए तो ख्याल में आता है, परंतु ये ज्ञान का कार्य चल रहा है, ये समझाने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे भूख लगी, मुझे रोना आया, मुझे भय लगता है, मुझे क्रोध आया, ये कोई बाजू वाले को पूछना नहीं पड़ता है। ये अपने में ज्ञान हो रहा है, ये बात हम जानते हैं, इसलिए उसके द्वारा हमको आत्मा है ये बात ख्याल में आती है। ये सारा अनुमान करना, तर्क करना, मेमोराइज करना, ये सारी बातें ज्ञान से ही चलती है। इसलिए ज्ञान को असाधारण गुण कहा है, उसका मुख्य लक्षण कहा है, पुद्गल से भिन्न करने वाला जो है। क्योंकि अनेक द्रव्य यहां मिले जुले हैं और मिले जुले वस्तुओं में से हमको आत्मा को जानना है। तो हम तो अभी तक पुद्गल को ही आत्मा यानी मैं मान रहे थे, अभी हमको जो सच्चा मैं है उसको मैं मानना जानना है, तो उसके लिए उसका लक्षण पहचानना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान की इतनी मुख्यता है। देखो अभी इस आगे वाले सूत्र में आने वाला है। देखो जीव का लक्षण क्या है, ये पांच भाव में से कौन से भाव बंध रूप है, कौन से नहीं है। तो हमने ये तो देखा था कि औदयिक भाव है वह बंध रूप है। देखो दूसरे पॉइंट में, पुण्य पाप दान पूजा व्रतादि भावों का समावेश होता है, ऐसे आश्रय और बंध दो औदयिक भाव है। संवर और निर्जरा मोह के औपशमिक शाउपशमिक और क्षायिक भाव है। एक शायिक भाव को ब्रैकेट में डाला है। वे शुद्धता के अंश होने से बंध रूप नहीं है। और मोक्ष क्षायिक भाव है, वह सर्वथा पूर्ण पवित्र पर्याय है, इसलिए वह बंध रूप नहीं है। उपयोग आत्मा रागादि से भिन्न माने उसे बंध नहीं होता। उपयोग स्वरूप आत्मा जो है ज्ञान दर्शन है, वो राग से भिन्न है, ऐसा जब भेद ज्ञान करते हैं तो उस जीव को वो अबंध भाव शुरू हो जाता है, बंध नहीं होता। शुद्ध त्रैकालिक पारिणामिक भाव बंध और मोक्ष से निरपेक्ष है, उसमें ना बंध है ना मोक्ष है। अभी हम जीव का लक्षण यहां देखेंगे, 10 मिनट है। और देखो 8 नंबर का सूत्र है, क्योंकि हमको जीव को पहचानना है ना, किसी भी चीज को पहचानना है तो लक्षण के द्वारा हम पहचानते हैं। तो यहां सूत्र बताया है, उपयोगो लक्षणम, यानी जीव का लक्षण उपयोग है। ये कहीं सुना था आपने? हाँ 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 शांति भाई, कहीं सुना था जीव का लक्षण उपयोग है? नहीं नहीं, अपने यहाँ जो अभी रोज चल रहा है ना अपना, हाँ स्वाद, हाँ हाँ शाम को सुना था, चढ़ाला में सुना था, वहाँ क्या चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। चेतन को है उपयोग रूप, चेतन को है ना जीव का, कौन सा रूप है उसका? उपयोग रूप है, यानी उपयोग ये चेतन का लक्षण है, यही उसका रूप है। तो यही यहां लिखते हैं उपयोगो लक्षणम, कोई भी शास्त्र निकालो यही बात होगी ना, जीव का लक्षण उपयोग है। अब टीका, लक्षण किसको कहना? बहुत से मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को अलग करने वाले हेतु को, ये सेतु हुआ है, उसको हेतु करना, हेतु को यानी साधन को। ये न्याय की भाषा है, जो न्याय ग्रंथ होते हैं ना, ये साधन किसको कहना, हेतु किसको कहना, लक्षण किसको कहना, अनात्मभूत लक्षण क्या, आत्मभूत, ये इसको कहते हैं न्याय की भाषा। न्याय के ग्रंथ कुछ अलग होते हैं, उसमें इस भाषा में बात की जाती है, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। यहां लक्षण किसको कहना, कि ऐसी जो कोई पहचान वाला चिन्ह है उसके द्वारा हम पहचान लेते हैं, तो उसको हेतु या साधन कहने में आता है। तो अनेक पदार्थों में से कैसे पदार्थ मिले जुले हैं, हमने देखा यहाँ एक जीव द्रव्य है और अनंत पुद्गल परमाणु है, ये मिले जुले हैं, इसका नाम हमने सीखा था असमान जातीय द्रव्य पर्याय। दो भिन्न जाति के द्रव्यों का अभी मिली जुली यहाँ पर्याय हुई है, मनुष्य पर्याय, इसमें से हमको जीव को भिन्न पहचानना है, अभी भिन्न करना नहीं है। अरिहंत भगवान के भी वो एक ही जगह में असमान जाति द्रव्य पर्याय चल रही है कि नहीं, अरिहंतों की क्या भिन्न हो गए वे, तो वे है इसलिए हमारा आत्मानुभव रुका, ऐसी कोई बात नहीं है, हमको भिन्न पहचानना है। तो ऐसा जो लक्षण है, हेतु है, उसको यहाँ साधन है, उसको लक्षण कहते हैं। अब उपयोग, चैतन्य गुण के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। ये ज्ञान दर्शन का जो उसकी जो कार्य चलता है उसको यहाँ उपयोग कहा है। उपयोग को ज्ञान दर्शन भी कहते हैं, वह सभी जीवों के होता है, वो गे हुआ है, जीवों के होता है और जीव के अतिरिक्त यानी जीव के अलावा, जीव को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता। लक्षण ऐसा ही चाहिए, हमको जीव का लक्षण बांधना है या नक्की करना है तो लक्षण ऐसा चाहिए वो सभी जीवों में पाया जाना चाहिए, और लक्षण ऐसा चाहिए वो जीव के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं चाहिए। यदि हम केवल ज्ञान को जीव का लक्षण कहेंगे तो क्या होगा, क्या सभी जीवों में केवल ज्ञान है? तो आप कहते नहीं है, बारहवें गुणस्थान तक के जीवों को केवल ज्ञान नहीं है और अरिहंतों सिद्धों को केवल ज्ञान है, तो सभी जीव उसमें कवर नहीं होते हैं, स्मॉल पार्ट ही कवर होता है, तो ये सभी जीवों का लक्षण नहीं कह सकते। पहले एक बार आया था, इसको क्या कहेंगे, अव्याप्ति लक्षण कहेंगे, क्योंकि सबको व्याप्त नहीं किया है ना, पूरे द्रव्य में जीवों में ये व्याप्त नहीं है, थोड़े से ही जीवों में पाया जाता है। अब यदि हम कहेंगे अमूर्तिक पना ये आत्मा का लक्षण है तो क्या होगा, दूसरे भी द्रव्य अमूर्तिक है, धर्म अधर्म आकाश काल भी अमूर्तिक है, तो ये लक्षण ऐसा चाहिए एकमात्र जीव में ही होना, सब जीवों में होना चाहिए और अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाना चाहिए। तो ऐसा कौन सा लक्षण है कि जो सभी जीवों में है, निगोद से लेकर सिद्धों तक पाया जाता है और अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाता, आप बोलो कौन सा लक्षण है? ज्ञान, बरोबर। इसलिए उसे जीव का असाधारण गुण अथवा लक्षण कहते हैं, और वह सद्भूत यानी आत्मभूत लक्षण है, इसलिए सब जीवों में सदा होता है। ये आत्मभूत क्या होता है, देखो आत्मभूत यानी जो जीव का लक्षण है, जीव का गुण है, उसको हम आत्मभूत कहेंगे, आत्मा का भूत नहीं आत्मा यानी स्व। देखो जैसे हम कहते हैं कोई लकड़ी लेके चल रहा है, बहुत सारे यहाँ बैठे हैं सभा में, हम कहेंगे वो लकड़ी वाले जो है ना, या वो जो टोपी डालकर बैठे, टोपी वाले, तो ये टोपी उनका आत्मभूत लक्षण है क्या अनात्मभूत है कि बाह्य लक्षण, उसने वो हाथ में पकड़ा है ना, लकड़ी को हाथ में पकड़ा है, टोपी को सिर में रखा है, तो वो बाजू में भी रख सकते हैं ना, या भी हम कहेंगे ये चश्मे वाले जो है, वो चश्मा क्या हुआ, अनात्मभूत लक्षण है। ये सफेद कुर्ता वाला कहेंगे तो क्या होगा, अनात्मभूत लक्षण, और आत्मभूत क्या है वो उससे कभी दूर नहीं किया जा सकता, उसको कहेंगे आत्मभूत लक्षण है। एक तो असाधारण लक्षण, असाधारण गुण है जो अन्य द्रव्य में नहीं है, और उसका आत्मभूत लक्षण है कि जो उसको छोड़कर कभी कहीं जा ही नहीं सकता, इसलिए ये आत्मभूत लक्षण है। इसलिए सब जीवों में कब रहता है, सदा रहता है, क्योंकि उसका नित्य तादात्म्य संबंध है द्रव्य के साथ। इस सूत्र में ऐसा सामान्य लक्षण दिया है जो सब जीवों पर लागू होता है, बराबर है। अब आगे, जैसे सोने चांदी का एक पिंड होने पर भी उसमें सोना अपने पीलेपन आदि लक्षण से और चांदी अपने शुक्लादि लक्षण से दोनों अलग अलग है। क्या कहते, सोना और चांदी दोनों को पिघलकर एक पिंड बना दिया, उसका कोई एक लकड़ी बना दी, जो कुछ बना दिया उसका, तो उस वस्तु में सोना और चांदी भिन्न कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसमें प्रोसेस करके भिन्न भिन्न फिर दोबारा करते ना, क्यों? वो भिन्न है इसलिए उसको भिन्न करेंगे। उसमें भी जो अभी हम कहेंगे ना 24 कैरेट का सोना था और उसमें चांदी मिला दिया, अभी हम उसको कुछ समझने के लिए हम 10 कैरेट कहेंगे, तो 10 कैरेट में जो सोना है वो 100% है क्या? नहीं है। जो सोना है वो सोना ही है, दोनों को मिलकर जो अभी अवस्था हुई उसको हमने 10 कैरेट कह दिया, परंतु जो सोना है वो पीलेपन वाला सोना ही है और जो चांदी है वो चांदी ही है, उसके शुक्ला देने सफेद कलर है उसका, तो दोनों को मिलजुल कर जो पर्याय हुई है उसको हम कहेंगे 10 कैरेट की है, परंतु दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य है, ऐसा उनका भेद जाना जा सकता है। एक में रहते हुए भी हम के वो सुनार बताते थे, वो कसौटी पत्थर ये इतने कैरेट वाला सोना है, अभी है इकट्ठा भिन्न जान सकते हैं। इसी प्रकार जीव और कर्म नो कर्म, एक बाजू जीव और एक बाजू कर्म और नो कर्म, कर्म है नहीं जो कर्मान शरीर है और नो कर्म है शरीर मन वाणी आदि सब पुद्गल, एक क्षेत्र में होने पर एक ही क्षेत्र में रहते हैं, जहां ये जीव है वहीं पर कर्म भी है और नो कर्म भी है। जीव अपने उपयोग लक्षण के द्वारा कर्म नो कर्म से अलग है, जिसमें ज्ञान दर्शन है वह जीव है, कर्म और नो कर्म में ज्ञान और दर्शन नहीं है, ये चिन्ह है, उसके द्वारा हम दोनों को भिन्न पहचानते हैं, इसलिए ज्ञान को मुख्य किया। आपका भी भाई साहब का प्रश्न था ना, ज्ञान को क्यों यहां मुख्य किया? यहां रहते हुए में उनको हम भिन्न पहचान सकते हैं। और द्रव्य कर्म नो कर्म अपने स्पर्शादि लक्षण के द्वारा जीव से अलग है, जीव का लक्षण ज्ञान है, और अभी नो कर्म का लक्षण क्या है, शरीर का लक्षण क्या है? स्पर्शादि, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाए जाए वो कर्म नो कर्म है। इस प्रकार उनका भेद प्रत्यक्ष जाना जा सकता है, यानी वो हमारे अनुभव में आता है कि ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है वो पुद्गल है और यहां जो जानने का कार्य चल रहा है वो मैं जीव हूं, ऐसे वो स्पष्ट भिन्न जान सकता है, प्रत्यक्ष स्पष्ट जान सकता है, इसलिए उसको यहां लक्षण कहा है। बाकी चर्चा हम आगे करेंगे कल। बोलो 2400 भगवान की जय।